नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार टावर को 28 अगस्त को ब्लास्ट कराकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। 32 मंजिला इस इमारत को विस्फोटक से उड़ाया जाएगा। ब्लास्ट वाले दिन आसपास के अपार्टमेंट को खाली करा लिया जाएगा, जिसकी सूचना पहले ही रेजिडेंट्स को दी जा चुकी है। 500 मीटर के दायरे के किसी भी फ्लैट में कोई नहीं रह सकता। सुबह 6 बजे तक इलाका खाली करा लिया जाएगा। इसके बाद बिजली, गैस, पानी का कनेक्शन भी बंद कर दिया जाएगा। लोग अभी से शहर में किसी सगे संबंधी के यहाँ गेस्ट हाउस, होटल आदि में शिफ्ट होने लगे हैं या इसकी तैयारी कर चुके हैं। कुछ लोग शहर से बाहर भी जाने की तैयारी में हैं। ब्लास्ट के बाद एजेंसी आसपास की सभी इमारतों की जांच करेगी। उसके बाद ही शाम 6 बजे तक लोगों को उनके घर जाने दिया जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नजदीकी अस्पतालों में पहले ही बेड बुक करा लिया गया है। मौके पर 6 डॉक्टरों की टीम और 6 एम्बुलेंस तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि ध्वस्तीकरण के दौरान धूल के गुबार 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। महिंद्रा समूह की जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 1 अरब डॉलर को पार कर गया। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उसकी इकाई ने ये साबित कर दिया है कि कंपनी काले धन का लेन देन किए बिना भी चल सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी की इस उपलब्धि ने रियल एस्टेट क्षेत्र में समूह के प्रवेश की पुष्टि की है। आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर लिखा कि आज महिंद्रा लाइफ स्पेस का बाजार पूंजीकरण 1 अरब डॉलर पार करने के साथ ही ये हमारे समूह में अगला यूनिकॉर्न बन गया। उन्होंने लिखा कि जब मैंने 80 के दशक के अंत में महिंद्रा यूजीन के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में कदम रखा था, तो मुझे बताया गया था कि हम काले धन का लेन देन किए बिना जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यही कारण था कि मुझे लगा कि हमें इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए और इस सोच को गलत साबित करना चाहिए। एयर इंडिया ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कर्मचारियों के वेतन में जो कटौती की जा रही थी, वह अब 1 सितंबर से बंद कर दी जाएगी। इससे एयरलाइन के कर्मचारी को महामारी से पहले तक जो वेतन मिलता था, अब वही वेतन उन्हें 1 सितंबर से मिलने लगेगा। टाटा समूह ने इस वर्ष जनवरी में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया। एयरलाइन ने 1 सितंबर से क्रू सदस्यों के भत्तों और भोजन व्यवस्था में संशोधन करने का भी निर्णय किया। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि एयरलाइन सभी कर्मचारियों के वेतन में की जा रही कटौती 1 सितंबर 2022 से बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि लाभ प्रदाता के लिए एयरलाइन को अभी बहुत कुछ करना होगा। कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित एयरलाइन उद्योग को लागत कम करने के लिए वेतन कटौती समेत कई कदम उठाने पड़े थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि आयकर विभाग कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों में दस्तक दे रहा है और विदेशों में संपत्तियां रखने वाले भारतीयों के बारे में आंकड़े के विश्लेषण का तरीका अपना रहा है। आयकर विभाग का नियंत्रक संगठन CBDT कर चोरी की घटनाएं रोकने के लिए देश भर में तलाशी अभियान और संदिग्ध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई चलाता है। इसके अलावा वह प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत सरकार के लिए राजस्व का संग्रह भी करता है। CBDT के चेयरमैन ने एक परिचर्चा के दौरान कहा, अब अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों को भी निगरानी की जद में लाया गया है। उन्होंने कहा, हम खुद को सिर्फ रियल एस्टेट या डेवलपरों तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं, अब हम अर्थव्यवस्था के नए इलाकों एवं नए क्षेत्रों तक दस्तक दे रहे हैं। इनमें परिसंपत्ति, पुनर्गठन कंपनियां, गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं। 2 साल पहले चीनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किए जाने को लेकर चीनी कंपनी ने अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से 279 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसके बदले में भारतीय रेलवे के तहत डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उल्टा चीनी कंपनी पर ही 71 करोड़ रुपयों का दावा ठोक दिया। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में कानपुर से मुगलसराय तक के बीच में सिग्नल और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए साल 2016 में चीनी कंपनी को 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस काम को साल 2019 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम 2020 तक भी खत्म नहीं हो पाया था, जिसके बाद भारतीय रेलवे ने 2 साल पहले ये अनुबंध खत्म कर दिया। इसके खत्म होने के 2 साल बाद चीनी फर्म ने भारतीय रेलवे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 279 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा किया है। कोरोना वायरस के चलते लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। इसका असर बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान पर भी देखने को मिला है। बता दें कि 2021-22 में बीमा पॉलिसियों के मैच्योरिटी से पहले ही सरेंडर करने के मामलों में तेज वृद्धि देखी गई। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 के दौरान 2.3 करोड़ से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों को छोड़ा गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।